तो बहरहाल वापस आ जाते हैं हम अपने पहले मकसद पे। मकसद एक हो, जब मुसलमान टूटते हैं या तफरकेबाजी होती है, मकासिद का फ़र्क होता है। हम सब रोड पे चलते हैं ना, आप देखते हैं हम सब एक ही वे पे चल रहे होते हैं, गाड़ियाँ कोई 60 में कोई 70 की स्पीड पे। सब लोग एक वक्त पे आके अलग अलग क्यों हो जाते हैं, कभी सोचा आपने? आगे जब तक एक रोड पे चलना मकसद था रहे, जूं ही हमारे मकासिद बदले, मेरा मकसद मेरा घर था, आपका मकसद हॉस्पिटल था, आपका मकसद स्कूल था, फौरन देखिए रोड से गाड़ियाँ उतरती जाती हैं। बैठ के सोचा करें तो लोग कब टूटते हैं। नंबर एक, टूटने वाली बात यहाँ नहीं करी लेकिन इशारतन बात आ गई है तो लिख लें, टीम टूटती कब है? जब गलत फहमियाँ हो जाती हैं, जब हकूक और मुफादात की जंग लग जाती है, रस्साकशी हो जाती है। और टीम को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह शैतान की चाल होती है। शैतान को ये अच्छी तरह पता है कि जब मुसलमान एक मकसद पे जुड़ते हैं तो मैं उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, तो अकेले को तोड़ना चाहता है। वो तोड़ के करता है, हदीस में आता है कि अकेली भेड़ को भेड़िया खा जाता है। इसलिए कहा जमात के साथ रहो। ये हमने भी एक जो जमात के साथ वाली हदीस अपनी पसंद से कई जगह मोड़ ली हुई है ना, उसमें भी असल में टीम वर्क था। कहा अकेली भेड़ को भेड़िया खा जाता है। शैतान किसी को पहले अलग करता है फिर खाता है, बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी है वो। और मैं शैतान की चालें एक जगह पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग शैतान करता है उतनी तो हम भी नहीं करते, उसी से सीख लें। पैदा होते ही बच्चे के पास आके बैठ जाता है और मौत तक साथ लगा रहता है उसके। तो बहरहाल मकसद एक होगा। दूसरी चीज़ अज़्म और जज्बा, मोटिवेशन, ये मैंने करना है, ये काम मेरे बगैर हो नहीं सकता। शौक़ कह लें आप इसको, आप इसको इंसान की अपने अंदर की जिसको अर्ज कह लें। देखिए एक लफ्ज़ होता है जॉब और एक लफ्ज़ होता है मिशन। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाज़ दफ़ा आपको अपने मिशन की तकमील पे भी पैसे मिल सकते हैं, इंसान है ना, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। आपको पैसे किसी गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, किसी इदारे से मिल सकते हैं, किसी इंसान से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर सारे दीनदार बेचारे जो मस्जिदों में फुल टाइम काम कर रहे हैं, अगर उनको खाना पीना ही ना मिलेगा तो वो बेचारे लोगों से मांगेंगे। लेकिन याद रखिए कि मिशन और जॉब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मिशन में बंदा थकता नहीं है, उसको वक्त के पूरा होने का एहसास वहाँ से उठा नहीं देता। मिशन जो होता है ना, ये अज़्म और जज्बों के साथ आता है। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है, ये मेरा काम है, मैंने करना है। हर बंदा टीम का जब तक ये ना सोचे, टीम नहीं चलती। अल्लाह ताला अपने नबी को कहता है हर दिल मुमिनीन अलल क़िताल, सूरह तौबा या अनफाल है, चेक कर लीजिएगा बाद में। रग़बत दिलाइए मोमिनों को क़िताल पर। ग़ज़वे उहद बदर में जब सफ बंदी की, सबको उनकी जगहों पे फ़ाइज़ किया और नबी सल्लम अरीश पे चले गए, ऐसी जगह थी जहाँ से सब दिख रहे थे। और आपके साथ अबू बकर उस वक़्त भी एक पर्सनल सेक्रेटरी या मशवरे देने के लिए या लोगों के साथ रबता रखने में मौजूद थे। और उस वक्त फिर अल्लाह के नबी सल्लम वहाँ से लोगों को रग़बत दिला रहे थे। जब देखा ज़रा से सुस्त होने लगे लोग तो आपने वहाँ से जोश वाली बात की। हदीस में आता है कि गैर मुस्तहिक लोगों को ना दिया करो इल्म, ज़ाया हो जाएगा इल्म। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई वो ले लें कि जो आपको कुंदन बनाए, तो आपको इस कोर्स में एक एक चीज़ को मानना पड़ेगा, वक्त से लेके, होमवर्क से लेके और बाकी सारी चीज़ें। लेयरलेस निकालेंगे तो आगे काम करेंगे। जो लोग अज़्म और जज्बा रखते हैं ना, अब ये आपका फिर एक सवाल जहन में आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चले मेरे अंदर अज़्म है या जज्बा है कि नहीं। फिर इसकी भी लिख लें कुछ निशानियाँ होती हैं। पहली बात यह है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये आने के बाद आउट नहीं हो जाते। आ तो गए हैं, ज़रा हम कुछ और काम ना कर लें। सिर्फ रोल कॉल नहीं लगाते, साइन इन साइन आउट के शौकीन नहीं होते। फिर ये लोग उस काम पे आकर खुद ही काम में लग जाते हैं जो इनका काम होता है। फिर इसी तरह अज़्म और हौसले का मतलब ये है कि ऐसे बंदों को ख्वाब में भी अपने उस काम के ख्वाब आते हैं। वो कहते हैं ना, जब तक कोई चीज़ तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा ना बने ना, तो समझ लो कि वो तुम्हारा मिशन नहीं बना, वो हम और गम नहीं बना अभी तक। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत रस्मी कार्रवाइयों के हरीस नहीं होते कि पहले बैठें, कोई हमें डिक्टेशन दे, कोई मीटिंग्स है, ये है वो है, बल्कि ये करके दिखाने वाले होते हैं। फिर अज़्म और जज्बा जिसमें होता है, आप इसको इसी तरह समझ लें। हाँ कि ज़रा आप कह तो दे, आपके शौहर आपको कह दे कि बेगम कल चलेंगे शॉपिंग करने, ज्वेलर पे ले जाता हूँ। फिर देखे ज़रा अगले दिन सुबह मियाँ को याद दिलाना पड़ता है, आप कहेंगे हाँ मैं तो भूल ही गई। रात को ही नहीं नींद आती, ख्वाबों में ही सेट पहन पहन के देखेंगे कि क्या सजरा है मेरे ऊपर है। तो जज्बा और अज़्म दिखता है, चाल से दिखता है। बहरहाल अब अज़्म और हौसलों को आप खुद देखते जाएँ। तीसरी चीज़, बाहमी राबता और इफहाम व तफहीम की सलाहियत, कोऑर्डिनेशन और आपस में इस तरह से एक दूसरे की कमियों को पूरा कर लेते हैं कि किसी की को मजबूरी है तो उसको फौरन मेकअप करके उसकी मदद करना चाहते हैं। रब्ता बहुत ज़रूरी है। अगर रब्ता ना हो, नंबर ही कोई नहीं, पता ही नहीं रहते कहाँ है, गम क्या है, दुख क्या है, किस मसले में रहते हैं, तो फिर हम अमूमन लोगों को सही काम नहीं दे पाते, या काम करने वाले आपस में एक दूसरे की मजबूरियां नहीं सुन समझते। तो एक ख़ास हद तक किसी भी टीम में लोगों के साथ रबते होने बहुत ज़रूरी होते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम आगे जब चलाएंगे तो बात फिर आपके ग्रुप्स तक आएगी। तो उसके लिए भी समझें कि फिर ग्रुप के जो दो लोग हैं या तीन लोग हैं या पूरा ग्रुप है, किसी न किसी हद तक उनका आपस में रब्ता होना चाहिए, जितनी इजाज़त दी जाए। ये नहीं कि आप ग्रुप लीडर से फ़ोन लेके हर वक्त उनको तंग किया जाए, या एक दूसरे से ही कहा जाए अच्छा जी तुम ही मेरे हिस्से की रोल कॉल भी लगा देना और तुम ही मुझे होमवर्क बता दो। यानी आसान तरीके से एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, जब मैंने लफ्ज़ बोला ना हमो तफहीम, तो इसमें साथ ही मुझे एक ख़राबी भी दिख गई, और वो क्या कि बाज़ दफ़ा टीम मेंबर्स का आपस में इस किस्म का रब्ता हो जाता है, वो खुद ही इट्स इट कर लेते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता। भई आप कहाँ से आ गई, आप तो आज नहीं थी। नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि तुम चली जाना, मैं आज नहीं जा रही। भई आप क्या, आपका ये काम था आपको बताते। भई वो आप क्यों नहीं आए, वो मैंने फलां को बता दिया था। अफहाम और तफहीम का मतलब ये है कि एक दूसरे की मजबूरी समझें थोड़ा बहुत। जैसे आप देखे, मैंने सुना है कि लोग नर्सिंग करते हैं, चलो भाई तुम्हें आज तुम बीमार लगती है तुम बैठ जाओ मैं कर लेती हूँ, ये भारी काम मैं कर लेती हूँ। बस बच्चों के स्कूलों में काम करते हैं, चले आपसे क्या, आप बैठ जाए, आप आ गई हैं, हम आपको चाहे, इस तरह की तो ठीक है। लेकिन वो इस तरह, क्योंकि एक छोटा सा जुमला याद रखें, हर वो चीज़ जो सिस्टम को ख़राब करेगी वो नहीं करनी। दो का ऐसा रब्ता नहीं होना चाहिए कि वो कह जी हो गया आप फिक्र ना करें। क्यों ना फिक्र करें, जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है नाम तो उसी का लगना होता है। फिर चौथी खूबी जो एक टीम में होनी चाहिए, और वो क्या है कि हर चीज़ के पस मंज़र में देखने की सलाहियत हो। पस मंज़र कहते हैं, पस कहते हैं पीछे को और मंज़र कहते हैं सीन, यानी बिहाइंड द सीन देखने की सलाहियत हो। हमेशा हर चीज़ जो सामने हमें दिखती है ना, असल में वैसी नहीं होती। तो हमेशा जो चीज़ सामने दिखती है ना, वो ठीक नहीं होती, बैक पे देखिए। और इसको किसी हद तक विजडम और हिकमत भी कहते हैं, और ये आती है अल्लाह के खौफ से। और जो लोग खामोश रहते हैं ना, वो छुपे भी रहते हैं, और जो फौरन बोल देते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखिए कि इज्तमाई फ़ायदे की खातिर इनफरादी कुर्बानियों की बहरहाल ज़रूरत होती है। बार दफ़ा कह दिया जाता है कोई ऐसा काम जो अकल में नहीं आ रहा, तो सब्र कर ले, पी जाए कि ज़रूर कोई हिकमत ही होगी, तो हमें यह कहा गया इस काम में बेहतरी होगी तो ये कहा है, तो अड़ी नहीं करनी चाहिए, बैक में देखने की ज़रूरत होती है। कछुआ और खरगोश के दोनों में से एक ने दूसरे से रेस्ता फैसला किया, और उस वक़्त जो पहली दौड़ में कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, क्योंकि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चल के वहाँ पहुँच गया जहाँ पे खरगोश तेज़ दौड़ के भी ना पहुँच सका, क्योंकि मंजिल से पहले ही थोड़ी दूर वो सो गया। फिर उसके बाद खरगोश को ख्याल आया, तो फिर उसने उसको कहा एक बार फिर जीतते हैं। तो उसने उस मामले को इस तरह से लिया कि अब पूरा सफ़र तय करके ही फिर सोऊंगा, जब पहुँच गया तो बस कहानी ख़त्म हो गई। अब आज हम इसको थोड़ा सा एक मजीद नए एंगल से देखते हैं। शुरू में वही कहानी है इसको कि दोनों ने एक रेस की, और रेस के शुरू में खरगोश तेज़ चला लेकिन कछुआ सिर्फ रिंग रहा था। खरगोश तेज़ चलते चलते एक जगह बैठा और थक गया कि चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, मुझे तो पता ही है मैं तो भाग के भी अपना वक्त पूरा कर लूँगा। तो उसने वहाँ अपने आप को आराम में रखा, लेकिन कछुआ आगे चला गया। अब आप देखिए कि कछुआ आगे निकल गया, खरगोश पीछे रह गया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये बचपन से हम मुहावरा सुनते हैं कि जो मुस्तकिल चलता रहे और चाहे वो स्लो ही हो वो जीत जाता है। इसके बरक्स जो फास्ट हो लेकिन बीच में रुक जाए वो हार जाता है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है। अब क्या हुआ, एक नया तरीका हम इसको देखेंगे कि इस जीत का क्या है। इसके बाद खरगोश था, उसने सोचा कि ये क्यों हो गया, मैं क्यों हार गया, वजह सोची। फिर उसको समझ आई कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और केयरलेस हो गया था, रिलैक्स, यानी ये खाम खा एतबाद था कि मुझे आता है ये काम करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा उसने अपनी खामी को देखा। यहाँ हम सब के लिए अमल की बात क्या है कि जब भी कभी किसी चीज़ को ना कर पाएँ तो सोचें कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या वजह थी। अमूमन हम ऐसे वक्त में दूसरों को देते हैं, मतलब कहीं जाते जाते हमारी ठोकर से एक बॉस गिर गया, बजाय इसके कि ये कहें कि मैं देख के नहीं चली, क्या कहते हैं, ये ग्लास तुमने यहाँ रखा क्यों था, हाथ लग के टूट गया, और कुछ ना कहें तो मैं कहती हूँ तुमने मेरी मत मारी हुई ना इसलिए मेरे से ये टूट गया। हाँ, तो दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपना कसूर ढूंढते हैं। फिर इसके बाद इसने कहा कि चलो ठीक है, यानी इफ़ ही हैड नॉट टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड देयर इज नो वे द टॉर्टॉइस कुड हैव बीट हिम। ये कहता है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, अगर वाकई मैं इसको सही लेता, ऐसी एक अपने लिए ले ना लेता, तो कभी भी जो कछुआ था वो मुझसे जीतता ना। तो इसने कछुए से कहा कि आओ एक बार फिर मुकाबला करते हैं, कछुआ मान गया। अब क्या हुआ कि खरगोश जो था वो तेज़ भागा, बगैर रुके वो अपनी जगह पे पहुंच गया, जीत गया, जबकि कछुआ बहुत अभी पीछे था, कछुआ हार गया। अब क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। दो तरह के लोग होते हैं काम करने वाले, चूँकि हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि मेरे काम करने की रफ्तार क्या होती है, तेज़ चलती हूँ क्या आहिस्ता चलती हूँ, या तेज़ चल के आधा बीच में छोड़ के बस फिर फ़ोन पे लग जाती हूँ, सोने लग जाती हूँ, खाने लगती हूँ। तो असल चीज़ क्या चाहिए, फास्ट भी काम करें और कंसिस्टेंट भी हो। जो लोग स्लो काम करते हैं ना, लोग एक वक्त आते हैं उनसे फिर जान छुड़ाते हैं। गाड़ियाँ चलाते वक्त आप रोड में देखें, जो गाड़ी आहिस्ता चलती है ना, बिल आखिर सब लोग उससे आगे निकल जाते हैं, कौन उसके पीछे रेंगे। तो ज़िंदगी में अगर हम स्लो काम करेंगे, बात आहिस्ता करें, लोग आपके बस ठीक है मैं समझ गई, आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लोग आपके पीछे नहीं आपके आगे चलेंगे, तो आप हमेशा फॉलोअर्स ही रहेंगे अगर आप स्लो चलेंगे। लीडर बनने के लिए फास्ट चलना पड़ता है। अब यही हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, एक बहुत स्लो है और रिलायबल भी है, दूसरा तेज़ भी है रिलायबल भी है, तो कौन सा जीतेगा इंशाल्लाह उस काम में, जो तेज़ भी हो रिलायबल भी हो कंसिस्टेंट भी हो, काम करे भी अच्छा, जल्दी भी करे और मुस्तकिल मिजाज भी हो। आप कितना ही अच्छा काम करें, आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो कोई नहीं आपको रखेगा। आपके एक बहुत अच्छी रिसेप्शनिस्ट हैं, वेरी गुड, वेरी पंक्चुअल, बहुत कुछ सब कुछ, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान में रहती हैं तो हमें क्या लगे उससे, हम नॉर्वे में रहते हैं। अवेलेबिलिटी शर्त, आप पहले, फर्स्ट थिंग आपकी अवेलेबिलिटी है, आपकी सारी स्किल्स लोग बाद में देखेंगे। इसलिए हमेशा इंसान को क्या होना चाहिए कि इट्स गुड टू बी स्लो एंड स्टेडी बट इट्स बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। तेज काम करें और अच्छा करें, स्लो ना करें। अभी भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अब कछुए ने कहा अच्छा मैं क्यों हार गया, ये जीत गया मैं, हार गया अब मैं क्या करूं। इसने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं एक और रेस का मुकाबला करता हूँ। इसने खरगोश से कहा कि तुम एक और मेरे साथ रेस करो, लेकिन अब इस दफ़ा हम डिफरेंट तरफ चलेंगे। खरगोश ने कहा ठीक है, मान गया। अब जब सफ़र शुरू किया तो आप देखिए कि इस कछुए ने एक अकलमंदी की कि इस दफ़ा जो रूट ढूंढा उसके बीच में पानी आता था, जैसे दरिया कह लें, कोई नदी नाला, कछुआ पानी में तैर सकता है, खरगोश जो है वो नहीं तैर सकता। ज्यों ही पानी की जगह सामने आई, खरगोश खड़ा है, इतने में पीछे से कछुआ जो है वो तेज आता चलता चलता आ गया। अब उसने आके तो वो पानी जो था उसको क्रॉस किया, वो जीत गया, ये हार गया। अब कौन जीता, कछुआ जीत गया, खरगोश पीछा हुआ। अब इसमें फिर हमें समझ आती है, इसमें से एक अमल की बात है कि पहले ये देखिए कि आपने आपके अंदर खूबी क्या है। रास्ता शुरू करने से पहले जहाँ भी आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वहाँ से देखिए कि रास्ते में कोई दरिया तो नहीं आता है। तो फिर जब कभी ऐसे कोई मामलात हों तो उसको शुरू में टैकल करें। बाज़ दफ़ा हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक अच्छी बात करता है तो उसको ये देख लेना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं जो मैनेजमेंट में हैं वो किस तरह के हैं। यानी मकसद सारी बात का ये है कि कोई सफ़र शुरू करने से पहले देखिए कि पहुंचना कहाँ है। और अकलमंद तो वो होता है जो मंजिल को देखकर कदम उठाता है, यही है मुत्तकी। वौलाएका हुमुल मुफ्लिहून कौन होते हैं कि वो आखरत को सामने रखकर घर से निकलते हैं। अब फिर एक और मौका आता है, इससे ये भी पता चलता है ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये ना कहें कि नहीं जी हम नहीं जीत सकते। अब कछुआ और जो खरगोश थे वो दोनों ने सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि हम दोस्त बन जाते हैं, क्यों हम एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, तुम आगे मैं आगे, मुकाबलेबाजी है, तुम जो करोगे मैंने भी वही करना है, आता हो करना ना आता हो करना है, जो मैं नहीं कर सकता मैं करूँगा, आओ हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा चले अब हम एक आखिरी रेस और खेलते हैं, पहली तो कंपटीटर बन के की थी ना, तो अब हम फ्रेंड्स बन के करते हैं। अब वही रास्ता था, ज्यों ही दरिया रास्ते में आया तो खरगोश और कछुआ पीछे का जो सफ़र था उसने कहा देखो खरगोश से कि तुम तेज़ चलते हो ना तो मैं तुम्हारे कंधों पर सवार हो जाता हूँ। जब दरिया से पहले का सफ़र था उसमें कछुआ खरगोश के कंधों पर बैठा, अब आगे आ गया दरिया तो क्या हुआ, कछुए ने खरगोश को उठा लिया। ये है टीम वर्क, जहाँ मेरी कमी है मैं आपकी मदद ले लूँ, जहाँ आप में कमी है आप मुझे मौका दे दें खिदमत का। तो ये है मॉरल कि जब एक स्लो और एक फास्ट बंदा मिलके कोई काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करने के बाद दोनों जीतते हैं। यही है, इसको कहते हैं विन विन गेम, तुम भी जीतो हम भी जीते हैं। ज़िंदगी में इसका मज़ा उठा के देखें, हम कहते हैं तुम जीते हो तो मैं हारी, तुम हारे तो मैं जीती। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि ब्रिलियंट बनिए, और ये मकसद जब सामने होता है तो कमियां बेशियां पूरी करते कराते एक इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे लेता है। हस्बैंड वाइफ को देख ले, एक स्ट्रांग हो सकता है पर्सनैलिटी में, एक लो होता है, तो क्या ये कहते रहे मेरा हस्बैंड आता ही कुछ नहीं, आता ही कुछ नहीं, करता ही कुछ नहीं? नहीं, आप उसकी कमज़ोरी को छुपाइए। इसी तरह बाज़ बीवियाँ जो होती हैं उनमें कमी हो सकती है। तो असल बात यह है कि टीम वर्क जो है वो ज़िंदगी का हुसन है। लेकिन क्या वजह है कि टीम बन नहीं पाती, मोटे मोटी बात दोहरा लेते हैं इसको एंड करते हुए कि तीन अमूमी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग टीम वर्क नहीं कर पाते। पहली वजह है स्किल्स की कमी, स्किल्स कोई नहीं है, जो काम एक बंदे को दिया जाना था वो कर नहीं पा रहा। दूसरी वजह होती है ट्रेनिंग की कमी, स्किल्स बहुत है माशाल्लाह, खूबियाँ अल्लाह ने बहुत दी हुई हैं, लेकिन कोई ट्रेन करने वाला नहीं। तीसरी वजह होती है साइकोलॉजिकल कमियाँ, नफ्सियाती कमज़ोरियाँ या साइकोलॉजिकली वीकनेसेस कुछ ऐसी होती हैं। फिर मिजाज का फ़र्क होता है, मूड का फ़र्क होता है, बाज़ दफ़ा ख्यालात एक जैसे होते हैं लेकिन आदतों का फ़र्क होता है। फिर बाज़ लोग जो होते हैं वो सीखना नहीं चाहते, बाज़ लोग दूसरों को मौका नहीं देना चाहते। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से टीम्स जो होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी टीम की स्पिरिट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपको लग रहा है कि आपकी टीम शुरू में अच्छी थी अब ढीली होती जा रही है, या उसके अंदर काम करने का मोटिवेशन कम होता जा रहा है, या उनके अंदर जोश कम हो गया है, तो उनको क्या करना चाहिए? नंबर एक, हम लिखिए वही हम, मैं की बजाय हम का लफ्ज़ उनको याद दिला दें, एहसास दिलाइए कि ये हमारा काम है, बजाय इसके कि ये कहा जाए मेरा ये काम तुम्हारा ये काम, बल्कि हमारा काम है। उनको सिखाइए कि ये काम आपका अपना काम है। फिर दूसरी चीज़, एहसास से ज़िम्मेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा काम अपनी टीम के मेंबर्स पे डाल दें, उनको लगे कि हमारे बगैर काम चलेगा ही नहीं। रातों को बैठकर रबते हों, मीटिंग्स से बात की जाए, लोगों को एहसास दिलाएं कि हम रात को भी जागते हैं दिन को भी जाग रहे हैं, इस तरीके से लोगों को ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए। तीसरी चीज़, एतमाद और हुस्न ज़न, आपस में भरपूर किस्म का एतमाद हो, ऐसी सिचुएशन ऐसी हालात पैदा किए जाएं कि जिसके बाद लोग वाकई अपने काम को अपना समझें। इसी में आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, एहसास मलकियत, उनको ये ना लगे हम एम्प्लॉई हैं, उनको ये लगे कि हम ओनर्स हैं, हम काम करेंगे हमें फ़ायदा होगा, हम नहीं करेंगे हमारा नुकसान होगा। चंद साल हुए जापान को आज़ाद हुए, लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी में वो कहाँ बढ़ गया, कभी आप उनके मुल्क को देखें कैसा सजा संवरा है, क्योंकि वो टीम बन के जीते हैं। और इंशाल्लाह किसी वक्त मौका हुआ तो आपको वो एक जो जलजला आया था कुछ महीने पहले जापान में, उसमें जापानियों का जो बिहेवियर था उस पर बात करूँ, नाकस टीम वो होती है जो छोटे छोटे मसलों को बड़ा बना के पेश करती है। जी हुआ ही नहीं, वकील नहीं था, तस्वीर तो थी, हथौड़ी तो थी, और आप तो हैं, बस कील नहीं था, इसलिए ये काम पिछले 8-10 दिन से नहीं हुआ। तो जब लोगों को इसमें अपने काम का एहसास होता है ना कि ये हमारा काम है, ये हमारा है। जैसे आप देखिए कि नॉर्वे के बारे में ये बात मारूफ है कि यहाँ वो कैंडिडेट नहीं जीतता जो लोगों को ये कह दे कि मैं टैक्स कम करवा दूंगा। लोग कहते हैं क्यों भाई, آپ کون ہوتے ہیں کام کروانے والے؟ ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، ہم اس کو مانیں گے. تو جب لوگوں کو یہ فائدہ ہونا، مثال چھوٹی سی دیتی ہوں، اگر جیسے کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی ادارہ کہہ لیں یا کوئی ادارہ، وہ کہتے ہیں اچھا جی جو لیٹ آئیں گے وہ فائن دیں گے، جو چھٹی کریں گے وہ فائن کر دیں گے، جو گھر سے سنیں گے وہ پیسے پے کر کے سنیں گے. آپ کہتے ہیں لو یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا دکانداری کھول رہی ہے، ایک سوچیے. اور دوسرا اگر وہ آپ کا اپنا کام ہو کہیں گے کوئی بات نہیں، میرے اسکول کو ہی جائے گا نا، پھر کیا. ویسے بھی تو بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ ہزاروں کا لاکھوں چندہ دے دیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کر پاتے. تو جب کوئی چیز ہمیں اپنی لگتی ہے ہم کہتے ہیں یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرے پیسے، اچھا یہ میرے اسکول کے پیسے، یہ اسکول کہیں ہیں، کوئی بات نہیں. تو جب چیز کو آپ کو اپنی لگتی ہے نا، تو ٹیم اچھی جو ہوتی ہے نا، اس کو یہ فیل ہونا چاہیے یہ میرا کام ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو آج تک آج کے لیے روکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک امت بنا دیں.